महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो उपाय आचार्य भगवंतों ने हम पर उपकार करके हमें बताए हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं। जीवन सबसे अच्छा तो अरहंत और सिद्ध अवस्था में जो परम वितराग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं उनका है, और उनके बताए हुए मार्ग पर जो उस वितरागता की उपासना करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु जन हैं उनका जीवन अच्छा है। एक सदगृहस्थ यही भावना भाता है कि वो भी अपनी उस परम वितराग विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करे, और जो उस अवस्था को प्राप्त करने में लगे हैं उनकी सेवा, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके, उनसे अपने जीवन में शिक्षा ले सके। तब घर गृहस्थी में रहकर के भी वो साधु जनों के जैसे आचरण की शिक्षा ले सकता है, इसके लिए आचार्य भगवंतों ने एक सदगृहस्थ के लिए शिक्षा व्रतों का उल्लेख किया है। पांच पापों से जितना घर गृहस्थी में बचा जा सकता है उतना बचने की सलाह दी। अशुभ प्रवृत्ति से बचकर के शुभ प्रवृत्ति करने का विचार दिया। शुभ प्रवृत्ति भी धीरे धीरे सीमित होती चली जाए ताकि हम शेष समय अपने उस वितराग स्वरूप को अनुभव कर सकें। ये प्रक्रिया आगे एक सदगृहस्थ कैसे करे इस पर विचार शिक्षा व्रत के रूप में अपन करेंगे। हमने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली, पांचों पाप सीमा से बाहर हम नहीं करेंगे। जो सीमाएं हैं उनमें भी अशुभ प्रवृत्ति से बचकर के शुभ प्रवृत्ति करेंगे, और अब वो जो वितराग स्वरूप है उसका भी थोड़ा थोड़ा स्वाद लिया जा सके, उसका भी चिंतन किया जा सके, इसके लिए उपाय करेंगे। तो कैसे करेंगे? देशावकाशिकम वा सामयिकम प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यम शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। एक सदगृहस्थ मुनि जनों के जैसे समतारों की साधना करने के लिए इन चार बातों का ध्यान रखता है कि बहुत बड़ी जो अपनी आजीविका के साधन जुटाने की सीमा बांध ली थी कि इससे बाहर अब अपनी आजीविका के साधन जुटाने के लिए मैं अशुभ प्रवृत्ति न करूंगा, इसके भीतर ही मैं अपने जो भी कार्य है सांसारिक उनको पूरा करूंगा, उसमें भी ताहू मैं फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। वो जो मैंने अपनी आजीविका के साधनों के उपाय के लिए जो सीमा रखी थी आवागमन की, उसको भी सीमित कर लेता है। यही देशावकाशिक व्रत है। ऐसी मर्यादा करने के बाद लेकिन मन में तो अब उस वितरागता की लगन है, सो सोचता है कि क्या करूं जिससे कि अधिक से अधिक समय मैं पाप प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति से बच करके उस वितरागता के लिए अनुभव कर सकूं, मुनि जनों के जैसे आचरण की शिक्षा ले सकूं। तो आ समय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन सर्वत्र च सामयिक सामयिकम नाम संशंसित। जो अपने आत्मस्वरूप को जान चुके हैं, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हैं, सामयिका संसंति, वे हमें एक सदगृहस्थ के लिए मुनियों के जैसे आचरण की शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि आ समय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावे। दिन भर में 24 घंटे में थोड़ा तो समय कहीं से बचाओ, जिससे कि पांच पापों से पूरी तरह से मुक्त होकर के समायः समता प्रयोजनम यस्य सा सामयिकः। जिन क्षणों में जितनी देर के लिए हो सके पांच पापों का त्याग करके और अपने समता भाव की आराधना करो, ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है, जिससे कि मुनियों के जैसे समता भाव हमारे घर गृहस्थी में रह करके भी बन सके। एक सदगृहस्थ यहां तक अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास कर सकता है घर गृहस्थी में रह करके। सामायिक के बारे में आचार्य भगवंतों ने प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कोई वर्षों व्रत नियम उपवास कर लेवे, उसका जितना फल मिलता है उससे कई गुना फल दान इत्यादि दे देवे, तो भी उससे भी कई गुना फल पंच परमेष्ठी के स्मरण करने रूप जो सामायिक है दो घड़ी उसमें मिल जाता है। ऐसी ये सामायिक कैसे की जाए, कब की जाए, कैसे भावों से की जाए, इन सब पर अपन विचार करें। ये एक प्रयोग है जिसमें विचार के साथ साथ एक प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ वे प्रयोग भी करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं उसी चीज की, ऐसे ही जो हमने सीखा समझा है उसे अब अपने अनुभव की प्रयोगशाला में और जीवन में अनुभव करके देखें। असल में हम इस संसार में अपने कर्मों का फल पाते हैं, तो फल पाने की मजबूरी नहीं है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, ऐसे ही फल पाते समय भी जैसे द्रव क्षेत्र काल और भाव होंगे वैसा वो कर्म हमें फल देगा। हम कर्म के फल में परिवर्तन लाने के लिए चाहें तो द्रव क्षेत्र काल और भाव इनको संभाल लेवें, तो हम अपने कर्मों के फल को भी आसानी से झेल सकते हैं, और इतना ही नहीं हम उसमें समता भाव रख करके उन कर्मों से मुक्त होने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। धनी जन समता भाव रख करके कर्मों की निर्जरा का ही प्रयत्न करते हैं। एक सदगृहस्थ उनसे यही शिक्षा ग्रहण करता है कि मैं भी तो थोड़ा सा दिन भर के पाप कार्यों से समय निकाल करके सुबह दोपहर शाम दो दो घड़ी और जरा उस समता की साधना तो कर लूं, पांच पापों से बच करके पढ़ना तो पूरा जीवन और सुबह से शाम तक और कोई ना कोई पाप कार्य में हमारा व्यतीत होता ही रहता है। तब क्या करें, द्रव क्षेत्र काल और भाव इन सब के परिवर्तन के लिए, क्योंकि अगर सामर्थ अच्छी है शरीर की तो असाता का उदय भी आ जावे तो सहन हो जाता। देखो वज्रपृषभ नाराज सहनन वाले मुनि महाराज को स्यालनी भक्षण करे या कि सिगड़ी जलती हुई और सिर पे रख दी जाए, तब भी वे अपने शरीर की उस सामर्थ्य के माध्यम से अपने परिणामों को संभाले रहते। तो द्रव्य भी महत्वपूर्ण है। मंदिर में बैठी हो मैं भैया, क्रोध कषाय का उदय आ भी जावे तो भीतर थोड़ी सी छटपटाहट होगी पर बिगाड़ ज्यादा नहीं होगा। और वो ही क्रोध बाहर आवे किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ की हम और अपशब्द भी बोल सकें, किसी पे हाथ भी उठा सकें, किसी का बुरा कर सकें, ऐसे क्षेत्र में क्रोध का उदय आवे तो उसका परिणाम दूसरा हो। सुबह के काल में जबकि हम और अभी अभी स्वस्थ मन से और दिन की शुरुआत कर रहे हैं उस समय कोई अपन से कुछ मांगने आ जावे तो फौरन दे देते कि देव भैया सुबह सुबह का समय है, और वो ही मांगने शाम को 4 बजे आवे तो अपना मन क्या करता कि 4 बातें सुनाए इसको कि इतने अच्छे तो भले हो, कचू काम करो, जब एक भीख पना छोड़ो। काल का भी असर अपने ऊपर पड़ता है और परिणाम तो है ही भैया, परिणाम संभाल लेवे तो कर्म जो है वो हमें ज्यादा मुश्किल में नहीं डालता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये सामायिक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन सब को संभालने के लिए ताकि हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकें, उनका फल भोगते समय जो जितनी समता रखता है वो कर्मों की उतनी निर्जरा करता है। मुनि जन इस सामायिक में कर्मों की निर्जरा करते हैं, सो मैं भी उनसे यही उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ और अपने जीवन में उसका अनुभव उसका स्वाद लेना चाहता हूँ। ऐसा सदग्रस्त विचार करके और सुबह दोपहर शाम इस प्रक्रिया को करता है। इस प्रक्रिया में इसकी अलग अलग अपन व्याख्याएं समझ लें। आचार्य भगवंतों ने सामायिक की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। एक व्याख्या तो यही हुई कि समायः समता प्रयोजनम यस्य सा सामयिका, ये व्युत्पत्ति अर्थ कहलाता है उस शब्द का। समय का अर्थ होता है समता भाव रखना। तो जिन दिन भर में मैं कुछ क्षण सुबह दोपहर शाम ऐसे निकालूं जिसमें कि मैं समता भाव रखूं, मेरे जीवन में सुख दुख सब लगे हुए हैं, सो हार जीत भी लगी हुई है, लाभ हानि लगी हुई है, मेरे शत्रु भी हैं तो मित्र भी हैं, मैं शत्रु को देख करके द्वेष करता हूँ, मित्र को देख के राग करता हूँ, अपनी हानि में दुखी होता हूँ और अपने लाभ में प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, ऐसे मेरे जीवन में विषमताएं बहुत हैं, मैं थोड़ी देर इस विषमता के बीच भी, इस सुख दुख हर्ष विषाद के बीच भी कैसे मैं और अपने परिणामों में साम्य भाव रख सकूं, इसकी साधना करना, ये समता की साधना का नाम ही सामायिक। दूसरी परिभाषा बनाते कि मेरे मन वचन काय की चंचलता बहुत है, मेरे मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति भी बहुत है, मेरे मन वचन काय का प्रकंपन भी बहुत अधिक है, मैं क्या करूं। 24 घंटे अगर मन वचन काय की इन प्रकंपनों जिनके माध्यम से मेरे कर्मों का आना निरंतर बना रहता है, अगर ये चलता रहेगा तो कभी मैं कर्मों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो अपने इन मन वचन काय के प्रकंपन, इनकी चंचलता, इनकी अस्थिरता और ये जो दुष्प्रवृत्ति मन वचन काय से होती उसको मैं रोक सकूं, सो सामायिक के मायने हैं मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति को रोक ले, उसके प्रकंपन को शांत कर देना, उसे स्थिर कर देना। जैसे कि दीपक की लौ हवा चलती है तो प्रकंपित हो जाती है, उस प्रकंपित लौ के ऊपर हाथ रखो तो कोई ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, पढ़ना चाहो तो पढ़ नहीं पाते क्योंकि रोशनी लड़खड़ाती सी है, सो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। और वही लौ हवाएं चलना बंद हो जावे या कि हम जरा हाथ की ओट दे देवे तो लौ स्थिर हो जाती है, तो फिर हाथ जरा ऊपर रखो तो हटाना पड़ेगा, तेज ऊष्मा लगेगी और प्रकाश बहुत अच्छे से होगा। ऐसे ही मेरे मन वचन काय में जब तक कषायों के झोंके लगते रहते हैं तब तक वे सब विचलित ही होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अपने कषायों को मंद करके अपने मन वचन काय के प्रकंपन को स्थिर करूं तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जिसमें कि मैं अपने आत्म स्वरूप को देख पाऊंगा, वो सहज रूप से प्राप्त हो सके, इसका नाम सामायिक। सामायिक के मायने ये नहीं है कि 4-5 मालाएं फेल नहीं और हो गो, इसका अर्थ ये नहीं है, ये विचार की प्रक्रिया है, निरंतर विचार के साथ साथ वैसी अनुभूति करने की प्रक्रिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और पांच पापों से मुक्त होकर के बैठे हुए हैं और पंच परमेष्ठी का चिंतन कर रहे हैं तो यह भी सामायिक कहलाएगी। और समयम यस्य प्रयोजनम या समयम प्रयोजनम यस्य सा सामायिकम, समयम इति को अर्था कहते आत्मा, एकमात्र जैन दर्शन है जिसमें समय के मायने काल ही नहीं समय के मायने आत्मा भी है, जिसमें अपने आत्मा के स्वरूप जो कि वीतरागता है उसका ही प्रयोजन है। संसार के राग द्वेष उस समय प्रयोजन भूत नहीं है, उस समय तो मेरी आत्मा और उसका जो वीतराग स्वरूप है वो मेरे लिए प्रयोजन भूत है। ऐसा उन क्षणों में जिन क्षणों में विचार आता है वे क्षण हमारे सामायिक के क्षण है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में हुआद तुलसी संगति साधु की। साधु के मतलब क्या? अब मुनि महाराज तो हमेशा उनके पास बैठ नहीं पाएंगे अपन, तो ये संगति क्या चीज है? मेरे भीतर की जो सज्जनता है, मेरे भीतर की जो वीतरागता है उसकी संगति। एक घड़ी आदि आधे में हूं आद, क्षण भर के लिए भी तो उस अपने वीतराग स्वरूप की संगति करें, वही मेरे जीवन में समता भाव लाएगी, उसी से मुझे अपने भीतर साधुत्व की अनुभूति हो सकती है। मैं साधु बनने के लिए प्रेरणा उसी से प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे भीतर की साधुता अगर प्रकट हो जावे तो बाहर से साधु बनने में देर नहीं लगेगी। भीतर की साधुता प्रकट नहीं हो पाती है तो फिर बाहर में भी जरा भय लगता है कि पता नहीं कहीं मैं चूक ना जाऊं। बाहर से साधु का वेश धारण करने पर भी जिम्मेदारी है कि भीतर भी साधुता आवे, और भीतर अगर साधुता आई है तो जिम्मेदारी है कि बाहर भी जो है और साधु के योग आचरण होवे। इसके लिए शिक्षा मिलती है कहे से, सामायिक से शिक्षा मिलती, क्योंकि साधु कहो या समता भाव कहो बात एक ही है। इस तरह ये सामायिक हमारे पूरे जीवन को एक ठीक दिशा देने का काम करती है, हमारे शरीर से हमें निष्प्रय बनाती है, तो द्रव के माध्यम से जो कर्मों का उदय आ रहा है उसको हम आसानी से जीत लेते, हमें क्षेत्र पवित्र बना देती, जिस क्षेत्र में हम बैठ करके सामायिक करते हैं उस क्षेत्र में पवित्रता हो जाती है, उस क्षेत्र में बैठ करके फिर जो है हमारे मन में जो विचार आते हैं उन पर हम आसानी से अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और काल ऐसा निर्धारित किया है कि संधि काल, जिसको अपन संध्या काल भी कहते हैं, एक्चुअली वो ट्रांजिशन पीरियड है, संधि काल है, दिन आने को है रात जाने को है, दोनों के बीच का ट्रांजिशन संधि काल, दिन जाने को है रात आने को है तब भी एक संधि काल, और जब सूर्य मिड में है सेंटर में है वो मध्यान्ह का काल, वो भी सामायिक का काल है। इनमें एक एक घड़ी आगे पीछे यानी दो घड़ी कम से कम, और ये काल अपन देखें तो रात्रि तो है तामसता की प्रतीक, आलस की प्रतीक, और दिन है श्रम का प्रतीक, और इस आलस और श्रम के बीच है संतुलन का समय। इसलिए ये जो संधि काल है वो हमारे सात्विकता का प्रतीक है, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों के बीच का काल है, ये सात्विक काल है, उसी काल को सामायिक के लिए चुना गया है ताकि परिणाम उस काल में हमारे आसानी से स्थिर हो सकें, हम अपने मन वचन काय को स्थिर कर सकें, हम अपने परिणामों को और साम भाव धारण करने के लिए और तैयार कर सकें। इसके लिए ये समय रखा गया। और भाव, भावों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सामायिक के भाव कैसे होना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए क्रम क्रम से। अपन ने अभी तो इतना ही आज समझने की कोशिश की है कि सामायिक की भूमिका बनाने से पहले मैं विचार तो कर लूं कि सामायिक का महत्व कितना है और उसमें मुझे करना क्या चाहिए, सामायिक कैसे करनी है कब करनी है ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन सामायिक में करना क्या है। सामायिक में मुझे अपने आत्मा का चिंतन या पंच परमेश्वरी का चिंतन या अपने मन वचन काय के जो दुष्प्रवृत्ति है उसका निरोध, या कि अपने भीतर उठने वाले विषम भावों को समता की तरफ ले जाना, या ऐसा कह दें कि ईर्ष्या से प्रमोद की तरफ जाने की यात्रा का नाम सामायिक है, क्रोध से क्षमा की तरफ जाने का नाम सामायिक है, या कि कठोरता से मृदुता की तरफ जाने का नाम, हिंसा से दया की तरफ जाने का नाम यही सामायिक है। मेरे इन परिणामों को मैं एक दिशा देता हूँ, मेरे इन परिणाम को एक निश्चित दिशा में ले जाने का पुरुषार्थ करता हूँ। ये अभ्यास सामायिक का अभ्यास है। सामायिक में और कुछ किया नहीं जाता भैया, सामायिक कोई करने का कार्य नहीं है। संसार में और सब चीजें जब कर करके हम थक जाते हैं, तब जाकर के जब हम सांसारिक समस्त कार्यों से उपरत हो जाते हैं उसका नाम है सामायिक। हमने शायद आपसे वो बात कही हो जब आश्रम में भिक्षुओं के बीच राजा आश्रम देखने आए थे तो एक हॉल में सारे कमरों के दरवाजे खुलते थे, ऐसा वो आश्रम बना था। भिक्षु राजा को लेके जाते हैं कि इस कमरे में हम उपदेश सुनते हैं, इसमें हम अपना स्वाध्याय करते हैं, इसमें हम भोजन करते हैं, इसमें हम चर्चा करते हैं, और जब जब भी कमरे में जाकर के बताते कि हम इसमें ये करते, फिर वापस आकर के हॉल में, तो हर बार राजा पूछता कि हॉल में क्या करते, तो कुछ नहीं बोलते, फिर कमरे में ले जाते कि इसमें ये करते। सारा आश्रम देखने के बाद जब पूछा कि कैसा लगा आश्रम, तो राजा ने कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन भिक्षुओं का आचरण मुझे समझ में नहीं आया, किस कमरे में क्या करते हैं ये तो सब बताया, लेकिन जब जब भी कमरे से हॉल में आए और मैंने पूछा कि हॉल में क्या करते तो सब चुप्पी साध लेते, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो भिक्षुओं ने कहा कि राजन, आप करने की बात करते थे कि इस हॉल में क्या करते हैं, तुम हम कैसे जवाब दें कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें तो जब हम करना धरना छोड़ करके हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं उसके लिए है, अब हम आप इसको भी हम कहें कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान कोई करने वाली चीज है क्या? सामायिक कोई करने की चीज है क्या? जैसे अपन कह देते हैं कि अब भैया इतना ठहर जाओ, अब हमारे जी को जा सामायिक कर बेटरी सुबह और कर लें, ये ऐसी नहीं, ये करने की चीज नहीं है। ये तो पांच पापों से जब करना धरना छोड़ दिया है तब जाकर के वो अवस्था घटित होती है, उसका नाम सामायिक है, समता की अवस्था घटित होना। राग द्वेष करते करते तो पूरा जीवन निकल जाता, पूरा दिन व्यतीत हो जाता। जिस समय मैं राग द्वेष नहीं करता हूं उस समय मेरे बेक्षण ही तो है सामायिक के। सो मुनि जनों के तो समता निरंतर ही है सामायिक चारित्र, इसलिए अलग से वे सामायिक फिर भी करते हैं आवश्यक की तरह, लेकिन श्रावक तो 24 घंटे समता भाव नहीं रख सकता, इसलिए उसके लिए समय निर्धारित कर दिया कि कम से कम इतने समय तो थोड़ा अभ्यास करो उस समता भाव रखने का। लेकिन उसे भी हम कोई कार्य की तरह नहीं करें, वो तो अपनी सहज कहना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए। सब समस्त प्रवृत्ति से निवृत्त होकर के जब हम बैठते हैं वो जो सहज प्रवृत्ति है वैसी प्रवृत्ति इस सामायिक के समय होनी चाहिए। एक छोटी सी घटना सुनाऊं और बात पूरी करता हूं, फिर अपन धीरे धीरे इस सामायिक में और क्या करना चाहिए इस पर विचार करेंगे, सामायिक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इस पर भी विचार करेंगे क्रम से। सिर्फ एक छोटी सी घटना आपसे कहूं कि कैसे हम अपने परिणामों में समता ला सकते हैं, क्योंकि साधना समता की है। प्रक्रिया कई लोग दोहरा लेते हैं, मैं चाहता तो आज ही आपको प्रक्रिया बता देता, प्रक्रियाएं तो बहुत दोहराते हैं, वर्षों वर्षों गुजर जाते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों समय सामायिक करने वालों के, लेकिन इसके बाद भी अगर परिणामों में समता नहीं आ पाई तो तीनों संध्याओं की सामायिक कोई ज्यादा लाभकारी नहीं। मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने लिए इशारा कर रहा हूं कि मैं तो तीनों समय सामायिक करता हूं, 25 वर्ष हो गए तीनों संध्याओं में सामायिक करता हूं, और अगर मेरे जीवन में मुझे लगता है कि समता नहीं आई तब मैंने क्या लाभ लिया उस तीनों संध्याओं में सामायिक करने का। ऐसा ही सामायिक करने वाले के मन में विचार आना चाहिए, भैया दो घड़ी तक किसी का मन शुभ में ही लगा रहे इतना भी बहुत कठिन है, और उस शुद्ध आत्म स्वरूप में 48 मिनट को रुक जावे तब तो फिर क्या कहना है। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। अगर उत्तम सहनन के साथ अपने उस शुद्ध आत्म वीतराग स्वरूप पर ध्यान एकाग्र हो जावे तो उसी भाव से केवल ज्ञान मुक्ति हो सकती है। सो 48 मिनट का समय तो अल्प रखा है, कम से कम अशुभ से बच के शुभ में 48 मिनट व्यतीत हो, और उस शुभ में से भी और फिर शुभ अशुभ दोनों के बीच जो भेद रेखा है वहां पर जाकर मन स्थिर हो जावे अपने उस शुद्ध स्वरूप पर। वैसे क्षण तो 48 मिनट में अत्यंत अल्प होते हैं जे हम जानते हैं, किसी दिन अगर 30 सेकंड को भी मन और आनंदित होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता तो आपसे नहीं कहता, अपने हाथ से पीठ थपथपाता कि जीत लिया किला, इतना ही बहुत है। 30 सेकंड भी बहुत होता है, हाँ एक मिनट तो नहीं कह रहा हूं, 30 सेकंड कह रहा हूं। उतनी देर भी अगर एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया चित्त, जिसमें राग द्वेष की चंचलता नहीं है, उतना भी हो गया, वैसे तो धर्मानुराग बना रहता है 48 मिनट तक, लेकिन उस धर्मानुराग के बीच में भी निरुपराग, वैसी निरुपराग की अवस्था आना तो बहुत विरला ही है। पर भावना भाने में क्या दिक्कत, अपन तो भावना भा सकते हैं कि अवस्था तो वो मुझे प्राप्त हो उसका आनंद, ताकि मैं अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, उसकी भावना तो भाई सकता हूं। सामायिक के क्षणों में ऐसी ही समता की साधना की जाती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण गौतम बुद्ध के जीवन का है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अपने अन्य भिक्षुओं के साथ चर्चा कर रहे थे, उतने में एक व्यक्ति अत्यंत उग्र होकर के और उन्हें गालियां देने लगा। दे सकता है, अब सामने गाली देने की हिम्मत नहीं पड़ती, अब तो पीछे से पड़ती, वो और ज्यादा कठिन है। हाँ अब तो परिचय दूसरे प्रकार से सहन करना पड़ता है, अब वैसे युद्ध भी नहीं होते कि आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, फिर बाद में तुरही बजेगी और शंख बजेगा कि अब चलो कर लो धर्म युद्ध, देखें किसके अंदर कितनी सामर्थ है। और शाम होते ही साथ फिर जिन जिन को चोट पहुंचाई उन्हीं उन्हीं को पट्टी बांधने भी जाते थे, सो इतनी कषाय की मंदता भी है। और दूसरे दिन फिर खड़े, अब तो होती है कि ये भी नहीं दिख रहे वो भी नहीं दिख रहे, रडार पे दिख रहे, सो बटन दबाया सो उनका विमान उनने गिराया, उनका आमने सामने वाली ताकत खत्म है, अब तो जा छुपी छुपी वाली है। हाँ ऐसा शीत युद्ध जो है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसा ही वर्तमान में भी है, ये जो एक लड़ाई भीतर में अपनी ही कषायों से हम करते रहते हैं वो निरंतर चलता रहता है युद्ध, और कुछ नहीं है। बाहर के युद्ध लड़ने की सामर्थ्य चाहिए शरीर की, लेकिन मन से जो युद्ध है वो निरंतर, मन की कलुषता निरंतर बनी रहती है, और वो उग्र हो गई उस व्यक्ति की। सो गौतम बुद्ध को आकर के अपशब्द कहना शुरू कर दिया, कहते ही चला गया अपशब्द, आप ऐसे हैं आप वैसे हैं। वे मुस्कुराते हुए सुनते चले जा रहे हैं, और भिक्षुओं में थोड़ा आक्रोश है कि अगर जरा सा इशारा करें तो हम इसे अभी उठा करके और बाहर फेंक के आ जाएं, इसमें क्या सामर्थ्य है। लेकिन वास्तव में सामर्थ्य तो वही है जो जितना सहन कर सके वो उतना सामर्थ्यवान। हाँ और जो उद्वेलित हो जावे जिसके मन वचन काय में चंचलता आ जावे, अस्थिरता आ जावे, तो वो फिर सामर्थ्य न कहलाए। सामायिक में हम अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हैं भैया, शरीर की ही नहीं मानसिक जो है रूप से हम अपने आप को बहुत सुदृढ़ बनाते हैं। ये सामायिक की प्रक्रिया ऐसी है। तो गौतम बुद्ध शांत बैठे हैं, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती चली जा रही है उसके अपशब्द सुनकर। रहा नहीं गया उससे कि इतना सब कहने के बाद भी चुप, और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो गुस्से में भर करके बहुत अधिक, और फिर उनके ऊपर थूक भी दिया। जैसे ही थूका तो मुस्कुराकर अपने दुपट्टे से गौतम बुद्ध ने वो पोंछ लिया और यथावत बैठे रहे। अब क्या रह गया शेष? अब तो कुछ भी शेष नहीं रहा। जो अपशब्द कहना थे वो भी कह लिए, जो बिगाड़ करना था वो भी कर लिया। पैर पटकते हुए उल्टे पांव और घर की तरफ लौटने लगा। सारे भिक्षु सकते में हैं कि बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। क्या हमारे गुरु इस छोटे से व्यक्ति से हार गए? ऐसा मालूम पड़ता है संसार में अज्ञानी जीव को ऐसा ही मालूम पड़ता है। ज्ञानवान होगा तो सिर्फ वही जानेगा कि कौन जीता है। जब जब भी ज्ञानी और अज्ञानी के बीच विवाद होता है तो जीत अज्ञानी की होती है, ज्ञानी हार जाता है। क्या करें, उसकी कषाय इतनी तीव्र नहीं होती। ऐसा लिखा, ज्ञानी अज्ञानी के बीच विवाद होवे तो जीत बाहर में दिखाई पड़ती अज्ञानी की, क्योंकि ज्ञानी की कषाय इतनी नहीं होती कि वो उस लड़ाई को हवा देता रहे। वो कहता हो तुम जीते हम हारे, चलो को लड़े बेकार। मैं सबकी सब बात चुपचाप स्वीकार कर लेता हूँ। लोग कहते हैं सब कुछ चुपचाप स्वीकार करते जाना कमजोरी है, सो मैं इस बात को भी स्वीकार कर लेता हूँ। क्या करूं, कमजोर हूं, मेरे से व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। समता की साधना ऐसी ही है, जहां बाहर में जो सामर्थ्यवान दिखाई देता है समझना कमजोर है, और जो बाहर में संसार में बहुत कमजोर मालूम पड़ता है वो अपने आत्मा में हो सकता है बहुत सामर्थ्यवान। बुद्ध के बारे में भिक्षुओं को लगता है कि कैसे हैं हमारे गुरु, एक सामान्य से व्यक्ति ने इतनी गालियां दी, थूक भी दिया तो कुछ नहीं कर पाए। सबके मन में अब अपने गुरु के प्रति थोड़ा थोड़ा भावों में विचलन आ गया। हाँ, कछु चमत्कार दिखा देते, अब मैं ये खूं बिल्कुल ऐसो कर देते कि बिल्कुल चरणों में डला दिखता, तो हम समझ जाते कि गुरुजी बहुत बड़े हैं। कच्चू नहीं कर पाए, जैसे कि गणेश जी बैठे और वो चूहा आन के उनको लड्डू ले जावे तो बन खूंका लगत कि जी का काम, जी कितने ज्यादा ताकतवर बनी है, वो चूहा ज्यादा ताकतवर, ऐसा मालूम पड़ता कि नहीं। अब चले गया वो वापिस गालियां देकर के थूक करके, लेकिन आधे रास्ते घर के पहुंचने पर मन में विचार आया कि मैंने इतने अपशब्द कहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अरे उसने सब स्वीकार कर लिया, है ही वैसा, मैंने ठीक कहा था, ऐसा मन में विचार आया। अगले क्षण 25-50 कदम चलने पर विचार थोड़ा बदला कि नहीं नहीं, चाहता तो अपने शिष्यों से कहकर मेरा बिगाड़ कर सकता था, कुछ भी मुझे दो शब्द कड़े कह सकता था, लेकिन कहे नहीं। अब थोड़ा मन में चटपटाहट हुई कि मैंने अब शब्द कहे और सामने वाले ने नहीं कहे। और थोड़ा आगे बढ़ता है तो मन में विचार आता है कि अरे देखो, मैंने थूक भी दिया था तो मुस्कुरा करके पहुंच लिया था, कुछ भी नहीं कहा। अब तो और छटपटाहट बढ़ गई, घर के दरवाजे खोल करके भीतर बैठा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, रोटी का ग्रास हाथ में लिया है तो नीचे रख दिया, अरे मैंने ठीक नहीं किया। अब भीतर जो है परिणामों में रात भर बेचैनी रही, सुबह के अभी सूरज नहीं उगा उसके पहले दरवाजे खोल करके बिना किसी से कहे नंगे पैर दौड़ता है उसी वृक्ष के पास चलूं, वहां बैठे होंगे वे, उनसे क्षमा मांग लूंगा। मैंने कल व्यर्थ ही अपशब्द कहे, मैंने व्यर्थ ही तुम्हें और चोट पहुंचाई, थूक दिया। लेकिन बुद्ध तो तब तक विहार करके अन्यत्र किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ चुके थे, मील दो मील वहीं तक पहुंचकर भागता जाता और चरणों में गिर जाता है, कहता क्षमा करें भगवान, मैंने आपसे अपशब्द कहे और थूका भी, आप क्षमा करें। तो बुद्ध कहते कौन हो भाई तुम? अरे आपने नहीं पहचाना, मैं वही जिसने कल आपको गालियां दी थी, जिसने कल आप पर थूका था, मुझे तो नहीं जान पड़ते कि तुम वो हो। नहीं आप विश्वास करें मैं वही हूं। तुम वो कैसे हो सकते? अगर वही होते तो आज भी वैसा ही करते। तुम वो नहीं हो, ये तो कोई और है जो क्षमा मांग रहा है। वो जो कोई और था जो कि उत्तेजित होकर के गालियां दे रहा था, और मैं भी तो वो नहीं हूं। देखो मैं उस वृक्ष के नीचे भी नहीं हूं, मैं तो अन्यत्र आ गया हूं, वो स्थान भी नहीं है और वो मैं भी नहीं हूं। बहुत कुछ व्यतीत हो चुका, कितनी पर्यायें गुजर गई उस कल से आज तक, और तुम अभी उसमें अटके हुए हो। ये है समत्व की साधना। प्रतिक्षण बीतता चला जाता है, किस क्षण को हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? एक क्षण पहले जो राग द्वेष हमारे मन में थे, अगले क्षण हम चाहें तो उस राग द्वेष से बच करके अपने वितरागता का स्वाद ले सकते हैं और उसे क्षमा कर दिया। लेकिन क्षमा भी कैसा किया है बताइए? कह रहे हैं कि तुम वो हो ही नहीं, मैं भी वो नहीं हूं, ये क्षमा भी क्या मांगना। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा मांगी और भूल भी गए, क्षमा की और भूल भी गए। वरना अपन तो क्षमा कर देते हैं और कई दिन तक याद रखते हैं कि मैंने तुम्हें क्षमा किया था। ये नहीं है समता। समता तो ये है कि जिसमें हम उन सब मिथ्या भावों से ही मुक्त हो जाते हैं जो किसी क्षण दूसरे के द्वारा या हमारे स्वयं के द्वारा हो जाते हैं, उन समस्त विषमताओं के बीच भी, और जब हम हर्ष विषाद के बीच भी और समता रख पाते, साम भाव रख पाते हैं, वास्तव में वही जीवन के क्षण सार्थक हैं। हम अब आगे आने वाले समय में रोज रोज अभ्यास शुरू करेंगे कि हम ऐसे क्षणों को अपने जीवन में संचित कर सकें और कह सकें कि हाँ मैंने 24 घंटे में ये एक मिनट अपना सार्थक कर लिया जीवन का, जिन क्षणों में मैंने समता रखी है। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।